नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्यों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन संवर्धन करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीकी क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेंचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेंचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने के विचार को सहमति दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।